स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 14 सितंबर दिन बुधवार। यूपी में सत्तारूढ़ यादव परिवार की अंदरूनी कलह आई खुलकर सामने। भतीजे अखिलेश और चाचा शिवपाल के बीच हो सकती है आर पार की लड़ाई।
ये बात शुरू से आ रही है कि परिवार के अंदर पार्टी के टॉप लीडरशिप में मतभेद है, मनभेद है, कुछ इशू को लेकर झगड़े भी थे।
जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में बैंक कर्मचारी ही डाल रहे हैं पैसे। सीरिया में युद्ध विराम के असर पर अलग अलग दावे।
सीरियस के полностью прекратили ведение огня за исключением районов।
रियो पैरालंपिक में भारत के देवेंद्र झाझरिया ने जीता गोल्ड। खबरें और भी, लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव और उनके चाचा और पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव के बीच लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। कल शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के कुछ ही घंटों के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश ने उनका मंत्रालय बदल लिया। अखिलेश ने शिवपाल को बेहद अहम माने जाने वाले सिंचाई, लोक निर्माण और राजस्व विभाग से हटा दिया। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश को हटाकर शिवपाल यादव को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। रियो पैरालंपिक में भारत को दूसरा स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। भारत के देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने F46 इवेंट में 63.97 मीटर दूर जेवलिन फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीता। इसराइल के पूर्व राष्ट्रपति शिमोन पेरिस को ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनके मस्तिष्क के अंदरूनी हिस्से में खून का बहाव हुआ था और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। 93 साल के पेरिस वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल के बाहर मौजूद उनके बेटे शेमी पेरिस ने कहा,
Myself and my family members are going through difficult times, difficult hours.
ये हमारे परिवार के लिए मुश्किल वक्त है। हम सब अस्पताल में ही मौजूद हैं। इस मौके पर आप सबने जो हमारी हिम्मत बढ़ाई है उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पिता के प्रति इतना प्यार जताने का धन्यवाद। मेरे पिता ने इसराइल यहूदी लोगों और आप सबकी बेहतरी के लिए काम किया। मैं इस मौके पर उनकी तरफ से आप सबको अपना प्यार और सलाम पेश करता हूं। ये थे शिमोन पेरिस के बेटे शेमी पेरिस। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन में एक संसदीय रिपोर्ट में लीबिया में ब्रिटेन और फ्रांस के साल 2011 में किए गए हस्तक्षेप की कड़ी आलोचना की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लीबिया में कर्नल मुअम्मार गद्दाफी के खिलाफ पनपी बगावत में फ्रांस और ब्रिटेन ने ज़रूरत से ज़्यादा दखल दिया और विद्रोहियों का साथ अपना मतलब साधने के मकसद से दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि लीबिया के लिए माकूल रणनीति बनाने में पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन बुरी तरह से विफल रहे, जिसकी वजह से लीबिया में गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन गई और प्रवासी समस्या भी खासी बढ़ गई। साथ ही उत्तरी अफ्रीका में इस्लामिक स्टेट को बढ़ने का मौका मिला। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन गुरुवार से अपना प्रचार अभियान फिर से शुरू करेंगी। उनके प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी। निमोनिया से पीड़ित हिलरी क्लिंटन फिलहाल आराम कर रही हैं। रविवार को 9/11 की बरसी के कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है सितंबर की 14 तारीख और दिन बुधवार। वक्त हो चुका है 6:33:42। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के परिवार की अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कैबिनेट में उनके साथी और रिश्ते में उनके सगे चाचा शिवपाल यादव आमने सामने दिखे। शुरुआत हुई जब अखिलेश ने राज्य के मुख्य सचिव और शिवपाल के करीबी माने जाने वाले दीपक सिंघल को हटा दिया। मुलायम ने अखिलेश से सपा प्रदेश प्रमुख की कुर्सी छीन कर उसे शिवपाल को दे दी। बदले में अखिलेश ने शिवपाल से सारे अहम मंत्रालय छीन लिए। आगे क्या होगा इस पर चर्चा करने के लिए लखनऊ से मेरे साथ जुटेंगे वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता और साथ में होंगे बीबीसी के हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं समीर की ही लखनऊ से भेजी ये रिपोर्ट।
यूं तो रविवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी कैबिनेट के दो अहम सदस्यों को बर्खास्त कर पार्टी और सरकार के बीच युद्ध का मैदान तैयार कर दिया था, लेकिन इस मैदान पर आमने सामने सेनाएं तब खड़ी दिखीं जब मंगलवार को मुख्य सचिव दीपक सिंघल को हटाकर प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया। दीपक सिंघल को हटाने के कुछ घंटों बाद ही पार्टी महासचिव रामगोपाल ने पत्र लिखकर शिवपाल सिंह यादव को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने की सूचना दी। यह पद पिछले करीब 7 साल से अखिलेश यादव के पास था। जाहिर है ये फैसला नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव का था, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसे अखिलेश ने सीधे तौर पर चुनौती के रूप में लिया और कुछ ही देर बाद चचा शिवपाल सिंह यादव से उन्होंने सिंचाई और लोक निर्माण जैसे कई अहम विभाग छीन लिए। पार्टी में ये सब क्यों हो रहा है, इस पर बात करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन विपक्षी दलों को जोरदार मौका जरूर मिल गया है। कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र मदान कहते हैं,
आज पूरी तरह से तो यह एहसास हो गया है कि 2017 में की वापसी नहीं है, उसी की आकांक्षा है और आकांक्षा में ऐसे जल्दबाजी में निर्णय लिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव की ईमानदारी से अगर 10 लोगों को बाहर करने पे आमदा हो जाए तो इनकी पार्टी में कोई बच्चे का नहीं।
वही बीजेपी का कहना है कि क्लीन छवि बनाने का मुख्यमंत्री नाटक कर रहे हैं। प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक कहते हैं कि ये सरकार और पार्टी की हताशा दिखा रहा है।
जन जाहिर है कि सैफई परिवार में जो कुछ ढका छुपा चल रहा था वो सतह पर है। मुख्यमंत्री तो वही थे, संवैधानिक अधिकार जो आज उनके पास है वो तब भी था। अब चला चली की बेला है और 2011-12 में भी हमने आपने सबने देखा है, राज्य की जनता ने भी देखा है कि इस तरह का प्रयोग हुआ। तत्कालीन बसपा नेत्री और मुख्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने कई मंत्रियों को हटाया, कई के विभाग बदले, कई अधिकारियों को विभाग दिया, लेकिन जनता समझदार है, सब समझ रही है कि भ्रष्टाचार को जो पल्ले में तो पुष्पित किए उनको संरक्षण दिया, अब आखिरी समय में अपना पल्ला झाड़ने की आवाज है।
वही जानकारों का कहना है कि इसमें नया कुछ नहीं है, विवाद काफी पहले से या यूं कहें कि जब से सरकार बनी है तभी से चले आ रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं,
ये बात शुरू से आ रही है कि परिवार के अंदर पार्टी के टॉप लीडरशिप में मतभेद है, मनभेद है, कुछ इशू को लेकर झगड़े भी थे, लेकिन वो किसी तरह बचाया जा रहा था। कभी नेताजी इंटरवीन कर जा रहे थे, कभी अखिलेश यादव थोड़ा मान जा रहे थे, करते करते बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ये स्थिति हो गई कि अब लगभग परिवार का पार्टी का झगड़ा जो सामने है सड़क पर है, जिसका इस पार्टी को इस सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2017 के चुनाव।
बहरहाल चर्चाएं ये भी हैं कि शिवपाल सिंह यादव इस्तीफा दे सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस्तीफा दे सकते हैं और विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। जानकारों का कहना है कि हो जो भी, पार्टी को इससे नुकसान ही होगा। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
और जैसा कि मैंने बताया था, लखनऊ से हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता दोनों ही जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। लेकिन सबसे पहले समीर, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जिस तरह से ये जो घटनाक्रम बदल रही है उत्तर प्रदेश में, पिछले 10-12 घंटों में क्या कोई ऐसी बात हुई?
जी इकबाल, 10-12 घंटों में कुछ ऐसा नया तो नहीं रहा। कल देर रात तक शिवपाल यादव के जो लखनऊ में घर है वहां पत्रकारों का जमावड़ा रहा, उनके बहुत सारे समर्थकों का जमावड़ा रहा, वो लोग शिवपाल के समर्थन में नारे लगा रहे थे। लेकिन शिवपाल सिंह यादव लखनऊ में नहीं थे, शिवपाल सिंह यादव बताया जा रहा था कि सैफई में है और मुलायम सिंह यादव दिल्ली में है। लेकिन आज सुबह माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह यादव लखनऊ पहुंच रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि, और रात से ही ये कयास थे जैसे हम लोगों की देर रात बात भी हुई थी, कि कुछ बड़ा घटनाक्रम संभावित है, आज हो सकता है मुलायम सिंह यादव के लखनऊ आने के बाद जरूर कोई ना कोई एक बड़ी खबर आएगी या कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा पार्टी और सरकार के लेवल पर।
जी शरद जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कोई बड़ा फैसला मुलायम सिंह के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? एक तरफ बेटा, एक तरफ भाई, करेंगे क्या वो?
मेरे हिसाब से ये तो मेरे ख्याल से उनके जीवन का सबसे बड़ी चुनौती यही है। एक तरफ बेटा है, एक तरफ भाई है, और वो बेटा जिसे उनके भाई नहीं पाला है, अखिलेश यादव का अधिकतर बचपन शिवपाल के घर में उनके बच्चों के साथ उनके साथ खेलते हुए बीता है। ऐसे में मुलायम सिंह के लिए ये चुनौती बहुत ही बड़ी है।
तो क्या हो सकता है, लेकिन आखिर ये समस्या इस हद तक क्यों पहुंच गई?
ये चल तो बहुत दिनों से रही थी, लेकिन इधर एक नया डेवलपमेंट हुआ जो अमर सिंह शामिल हुए। अमर सिंह ने आते ही उसके थोड़े दिनों बाद बयान दिया कि मैं मुलायमवादी हूँ, मैं समाजवादी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मुलायम सिंह से मिलने दिया जा रहा है। यह मेरे और शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ साजिश है। तो अगर उनको मुलायम सिंह से नहीं मिलने दिया जा रहा, तो इसमें शिवपाल सिंह के खिलाफ कहां से साजिश थी? वो यदि जताना चाहते थे कि वो और शिवपाल एक हैं, और अगर कोई उनको नहीं मिलने दे रहा है तो अखिलेश यादव। इसके बाद कल उन्होंने रात में एक बयान दिया, उन्होंने कहा मैं मुलायमवादी हूँ, मुलायम को जो कहेंगे मुझे मंजूर होगा, तो वैसा ही करूंगा। इस बार उन्होंने शिवपाल का नाम नहीं लिया। तो या तो ये स्वीकार कर चुके हैं कि शिवपाल यादव की हार हो गई है, उनके हाथ में बहुत ज्यादा पत्ते नहीं बचे हैं।
जी शरद जी, हम लोगों ने भी कल रात में अमर सिंह से बात करने की कोशिश की, हालांकि फ़ोन उठाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस मौजूदा घटनाक्रम पर मैं कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन क्या अब वाकई ये है कि मुलायम सिंह को या अखिलेश को या उनके चाचा शिवपाल को कोई अंतिम फैसला करना ही होगा, और वो कब तक हो सकता है?
बहुत संभावना है कि यह फैसला आज ही हो, और इसमें जो संभावनाएं हैं उसमें ये भी है कि शिवपाल चुपचाप हार स्वीकार कर लें, या हो सकता है कि शिवपाल इस्तीफा दे दें, या इस्तीफा देने के बाद चुनाव का इंतजार करें, पिता पुत्र मिलकर दोनों पसंद करें कि साहब उम्मीदवार कौन होंगे, या ये हो सकता है कि मुलायम सिंह अखिलेश को कहें कि आप गद्दी छोड़िए, अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इस बात की संभावना कहीं ज्यादा है कि मुलायम सिंह चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह सकते हैं अखिलेश को कि आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ें, पर अखिलेश मुख्यमंत्री का पद छोड़ने की जगह हो सकता है कि विधानसभा भंग करने की सिफारिश करें, जैसा अभी आपने कहा। तो ये बहुत ढेर सारी संभावनाएं हैं, इसमें क्या होगा ये तो हमें चंद घंटों बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन अभी संभावनाएं अपार हैं।
जी बहुत शुक्रिया शरद जी आपका इस तमाम समीक्षा के लिए। समीर, जाते जाते बस एक आखिरी सवाल, हालांकि हमें पता है कि कल बकरीद थी, इसलिए शायद छुट्टी होने के कारण अखबार बहुत कम छपे होंगे, लेकिन क्या अगर कुछ भी वहां के लखनऊ के अखबारों की कोई जानकारी है तो कुछ बता सकते हैं हमारे सुनने वालों को कि आखिर क्या कुछ वहां से छपा है?
जी इकबाल, सही आप कह रहे हैं कि बहुत से अखबार आज नहीं छपे हैं, लेकिन इनके जो ऑनलाइन एडिशन है जो इंटरनेट पे अखबारों के हैं, तो उनमें सभी में यही चर्चा छाई हुई है, अखिलेश, मुलायम सिंह, शिवपाल, यानी सरकार और पार्टी में, समाजवादी पार्टी में और राज्य सरकार में जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है। सपा में घमासान, अखिलेश से संगठन छिना तो शिवपाल से महत्वपूर्ण विभाग, ये दैनिक जागरण लिखता है। इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, लगभग जितने भी अखबार हैं सभी का ऑनलाइन एडिशन एक तरह की खबरों से भरा हुआ है। और जिस तरह की हम लोग बात कर रहे थे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि आज क्या हो सकता है, शिवपाल यादव इस्तीफा दे सकते हैं और मुलायम सिंह यादव खुद, जैसा शरद जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं अखिलेश यादव को पार्टी विधायक दल के नेता से हटा करके, मुख्यमंत्री के पद से हटा करके, और अखिलेश जी, तो इस तरह के कयासों की, और कल जो पूरा घटनाक्रम रहा मुख्य सचिव दीपक सिंगल को हटाए जाने से लेकर के और शिवपाल यादव से विभाग छीनने तक, इन्हीं खबरों की चर्चा इन अखबारों के ऑनलाइन संस्करणों में।
बहुत शुक्रिया समीर आपका, और एक दफा फिर बहुत शुक्रिया शरद गुप्ता जी आपका। तो अब दिल्ली स्टूडियो आ जाते हैं। प्रभात, आपने सारी बातें तो सुन ली, आपके अखबार कुछ खास कहते हैं इन खबरों के अलावा या और भी कुछ?
जी जी इकबाल जी, दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अखबारों में ये जो उत्तर प्रदेश का घमासान है इसको सुर्खियां बनाया गया, पहले पन्ने पर जगह मिली। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने दिल्ली में जो चिकनगुनिया और डेंगू का कहर है वो वाली खबर छापी, और साथ ही लिखा है कि दिल्ली के जो तमाम बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, सब इस मुश्किल की घड़ी में दिल्ली से बाहर हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी दिल्ली के जो हैं नजीब जंग, वो अमेरिका गए हुए हैं अपनी निजी यात्रा पर। अरविंद केजरीवाल अपने गले के कुछ चिकित्सा के लिए बेंगलोर गए हुए हैं। मनीष सिसोदिया भी देश से बाहर हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, जिसमें रूस के एक हैकर ग्रुप ने दावा किया है कि उन्होंने रियो ओलंपिक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण फाइलों को हैक किया है, जिसमें इस बार रूसी हैकर ग्रुप ने यह दावा किया है कि अमेरिका के कुछ एथलीट्स जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते, उनको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने जो डोप करने वाली दवाइयां हैं डोप उन वो करने की अनुमति दी है, जिसकी वजह से उन्हें स्वर्ण पदक जीतने में मदद मिली। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस इवेंट में जिसमें दीपा कर्माकर ने हिस्सा लिया था, उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली सिमोन बाइल्स ने भी डोपिंग की थी, ये दावा रूसी हैकर्स ग्रुप ने किया है।
बहुत शुक्रिया प्रभात आपका अखबारों की समीक्षा के लिए।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब बात सीरिया की। रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका समर्थित विद्रोही सीरिया में युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहे हैं और अमेरिका से अपील की है कि वो उनसे युद्ध विराम का पालन करने को कहें। रूस ने कहा है कि ऐसी हरकतें रूस और अमेरिका की सीरिया में शांति लाने की कोशिश पर पानी फेर सकती हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि युद्ध विराम के लागू होने के बाद सीरिया में जारी हिंसा में खासी कमी आई है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए प्रभात पांडे से।
सीरिया में युद्ध विराम लागू हुए अभी 48 घंटे भी नहीं बीते कि इस पर विवाद सामने आने लगे हैं। रूस ने कहा है कि युद्ध विराम के उल्लंघन के 20 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। रूस ने इसके लिए अमेरिका समर्थित विद्रोही गुटों को जिम्मेदार ठहराया है और साथ ही अमेरिका से अपील भी की है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इन विद्रोहियों से युद्ध विराम का पालन करने को कहे। सीरिया में रूस के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी विक्टर पोज़निकीर ने कहा,
सीरियाई правительственные войска полностью прекратили ведение огня за исключением районов।
सीरियाई सेना ने गोलीबारी बिल्कुल बंद कर दी है, वो सिर्फ वहां हमले कर रही है जहां आईएस और अल नुसरा फ्रंट के लड़ाके सक्रिय हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि सीरियाई सेना के जैसा संयम वो विद्रोही गुट नहीं दिखा रहे हैं जिन्हें अमरीका का समर्थन हासिल है। सीरिया में रूस के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी विक्टर पोज़निकीर के शब्द। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि युद्ध विराम के लागू होने के बाद से सीरिया के हालात में खासा सुधार हुआ है और वहां हिंसा में काफ़ी कमी देखी गई है। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टेफान डे मिस्टूरा ने जेनेवा में कहा,
Yesterday we did see some level of violence.
हमने कल युद्ध विराम के उल्लंघन की छुटपुट घटनाएं देखी जब विरोधी गुटों ने अलेप्पो के पास कुछ हवाई हमले और गोलीबारी की, लेकिन उसके बाद से इन घटनाओं में खासी कमी देखी गई है। सुबह तक तो फायरिंग काफी कम हो गई, हर जगह से लड़ाई में कमी देखी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टेफान डे मिस्टूरा के शब्द। उन्होंने कहा कि आने वाले 24 घंटे युद्ध विराम के लिए बहुत अहम साबित होंगे। महीनों तक चली बातचीत के बाद पिछले सप्ताह रूस और अमेरिका ने सीरिया में युद्ध विराम के समझौते पर सहमति जताई थी और सोमवार शाम से सीरिया में ये युद्ध विराम लागू हो गया है।
ये थे प्रभात पांडे।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
एक दफा फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में। मैं हूं इकबाल अहमद। इस वक्त हो चुके हैं 6:47 और 53 सेकंड और अब कुछ बिहार की खबर ले लेते हैं। तेजाब हत्याकांड में जमानत पर छूटे राष्ट्रीय जनता दल के नेता शहाबुद्दीन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बयान देकर राजनीति में तो हलचल मचा ही रखी है, विवाद अब और बढ़ गया है क्योंकि पत्रकार हत्याकांड के एक प्रमुख अभियुक्त की उनके साथ वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं। ये संदिग्ध भागलपुर में रिहाई से लेकर सीवान तक शहाबुद्दीन के साथ ही थे। पूरे ब्यौरे के साथ सुनिए पटना से नीरज सहाय की ये रिपोर्ट।
राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को भले ही सबूतों के अभाव या अभियोजन पक्ष के दलीलों की कमजोरी से तेजाब हत्याकांड में जमानत मिल गई हो, लेकिन मुख्य विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी ने इन पर राजनीतिक दबाव बनाए रखा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने महागठबंधन सरकार पर तंज कसते हुए मंगलवार को कई सवाल दागे। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि 3 वर्षों तक शहाबुद्दीन को कोर्ट में क्यों नहीं हाजिर कराया जा सका।
सरकार जवाब दे कि 3 वर्षों से जो ट्रायल बंद पड़ा है ये किसकी गलती से किसके कारण बंद पड़ा है, क्या मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, क्या ये गठबंधन की सरकार इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, इन तमाम सवालों का जवाब बिहार के मुख्यमंत्री को देना हो।
शहाबुद्दीन की परेशानी यूं ही खत्म होती नहीं दिख रही है, बल्कि पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में साजिशकर्ता की तस्वीर मीडिया में उजागर होने से उनकी परेशानी और बढ़ सकती है। पटना के एक अंग्रेजी अखबार ने राजदेव हत्याकांड के साजिशकर्ता बंटी को शहाबुद्दीन के रिहाई के जुलूस में शामिल दिखाई पड़ने का दावा किया है। सीवान जिला के SP सौरभ शाह के अनुसार
कांड में किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया था, तहकीकात करके 6 मुख्य अपराधियों को पकड़ा था, इसको टारगेट किया जा चुका है। उन्हीं से जब पूछताछ हुई थी उसमें यह पता चला कि इससे कई लोग पंडित को जानते हैं, तो इस सिलसिले में पंडित को हम लोग तफ्तीश के लिए पूछ रहे थे।
इस बीच दिवंगत पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी ने अखबार में छपी तस्वीर के आधार पर सरकार पर संवेदनहीन रवैया बरतने का आरोप लगाया है। वे कहती हैं कि
इन तस्वीरों को देखकर भी क्या सरकार को अभी भी सरकार ये कहेगी कि राजदेव रंजन की हत्या में इनका हाथ नहीं। बिहार सरकार से संबंधित तो किसी ने नहीं मुझे संपर्क किया, लेकिन मैं बिहार सरकार से ये जरूर कहना चाहूंगी कि अभी भी बिहार सरकार को ये चाहिए कि शहाबुद्दीन और बंटी जावेद जैसे लोगों पर चार्जशीट दाखिल करे।
शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कराने की मांग पर भाजपा ने राज्य भर में धरना देने का कार्यक्रम बनाया है, साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया है। नीरज सहाय, BBC पटना।
और बिहार के बाद अब एक खबर केंद्र सरकार से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जन धन योजना के बारे में RTI से मिली जानकारी से पता चला है कि खातों में बैंक के कर्मचारी अपनी तरफ से ही पैसे डाल रहे हैं। इसका मकसद इन खातों को चालू रखना और शून्य राशि वाले खातों की संख्या कम करना है। सरकार पर अपने काम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए ऐसा करने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि ऐसा करने के लिए बैंकों को कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं, ये सब उन्होंने अपनी मर्जी से किया है। हमारे साथी निखिल रंजन ने इस बारे में और जानकारी के लिए बातचीत की केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल से और पूछा कि इसके पीछे आखिर क्या कारण है।
देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है फाइनेंशियल इंक्लूसिव की और फाइनेंशियल लिटरेसी की। इसमें जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलने थे, लेकिन अकाउंट ऑपरेट होने के लिए बैंकों को हमने स्वतंत्र किया था कि आप कब तक उसको अकाउंट को ऑपरेट मानोगे, क्योंकि हमने एक इंद्रधनुष योजना लाई बैंकों के लिए, जिसमें बैंकों के रिफॉर्म के लिए हमने बताया कि भाई आप चेयरमैन होंगे, अब आपका MD CEO कहलाएगा, हम बहुत कम इंटरफेरेंस करेंगे, ये सब चीजें इंद्रधनुष योजना के पार्ट है। उसके तहत ही जब बैंकों को लगा कि भाई हम एक कोई हमारा नियम बनाएंगे, अगर कोई जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुल गया लेकिन हम उसको ऑपरेट कब तक मानेंगे, तो ऑपरेट मानने के लिए उन्होंने अपनी एक नीति बनाई। तो उनको लगा कि मान लो जीरो पे तो खुल गया लेकिन हम डाल के इसको ऑपरेट माने, 6 महीने तक कुछ नहीं होगा, तो अभी ये समझ लीजिए इसको फाइनेंशियल लिटरेसी का ही पार्ट है, जो कस्टमर है उनको समझाने का कि इसको समय समय पे आपकी पेंशन आएगी या फसल बीमा का पैसा आएगा या इंदिरा आवास का पैसा आएगा, इसके लिए आप इसको ऑपरेट करें। जैसे कोई आपका रुपए कार्ड नहीं लेके गया होगा, अदरवाइज तो ऑपरेट नहीं रहता, इसलिए उन्होंने अपना एक इंटरवेंशन किया। ये बैंकों का खुद का अपना इंटरवेंशन है और इसकी समीक्षा भी लगातार गवर्नमेंट कर रही है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से और जब से हमने आधार में से इसको जोड़ा है, हमने बहुत सा लीकेज पकड़ा है, इसलिए छोटी सी कोई बात प्रधानमंत्री जनधन की आ भी जाती है किसी पेपर में स्टोरी, तो इसके लिए इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है इसका। हम प्रधानमंत्री जनधन योजना में जितने भी खाते हैं उसको ऑपरेशनल और फंक्शनल रखना चाहते हैं, इसमें बैंकों का इंटरवेंशन था।
लेकिन ये काम जिन लोगों के नाम से खाते खुले हैं उनसे भी तो 1-2 रुपए या जो छोटी सी रकम लेकर के की गई है वो की जा सकती थी।
समझा रहे हैं, वो उनको भी समझा रहे हैं बराबर, लेकिन कुछ रह गए होंगे ऐसे जो नहीं कर पाए। तो अगर ये खाते बंद हो जाते वो ज्यादा खतरनाक था या खाते चालू रह गए और आप समझाएंगे वो ज्यादा ठीक
है। लेकिन संख्या लगातार कम हो रही है और लोगों का कहना है कि इसकी वजह से जो है
संख्या लगातार कम नहीं हो रही साहब। आप प्रधानमंत्री जनधन योजना और आधार का लिंकेज देख और कितना गवर्नमेंट का पैसा डायरेक्ट जाने लग गया उस बेनिफिशियरी के पास, उसका कभी आप असेसमेंट तो करिए।
तो आप इस स्थिति को क्या अभी ये जो बैंकों की जो कार्रवाई सामने आई है क्या इसको रोकने के लिए या आगे दूसरे तरीके से आजमाए जाए, क्या इसके लिए कुछ करेंगे?
इसको कंटिन्यू करने का इशू नहीं है, इशू ये है कि बैंक अकाउंट कैसे फंक्शनल है लगातार। तो उन्होंने अपना एक इंटरनल मैकेनिज्म तैयार किया और इंद्रधनुष योजना के माध्यम से हमने बैंकों को स्वतंत्र किया।
ये थे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल। और अब बात रियो पैरालंपिक की। भारत के देवेंद्र झाझरिया ने रियो पैरालंपिक की जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है। देवेंद्र ने जेवलिन थ्रो F46 इवेंट में गोल्ड मेडल तो जीता ही, साथ ही 63.97 मीटर दूर जेवलिन फेंककर नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। देवेंद्र एथेंस में 2004 में हुए पैरालंपिक में भी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। तब उन्होंने 62.15 मीटर जेवलिन फेंका था, जो कि इससे पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड था। यह रियो ओलंपिक में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों के हाई जंप मुकाबले में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। अब रियो पैरालंपिक में भारत के 4 पदक हो गए हैं, जिनमें 2 स्वर्ण पदक हैं। भारत की दीपा मलिक ने गोला फेंक में रजत और वरुण भाटी ने हाई जंप में कांस्य पदक जीता है। और अब बात क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड जब 22 तारीख को कानपुर में पहले टेस्ट मैच में आमने सामने होंगे, तो वो भारत का 500वां टेस्ट मैच होगा। दूसरी तरफ दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में चेतेश्वर पुजारा ने दोहरा शतक जमाया और रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट झटके। तो क्या इसका फायदा उन्हें टेस्ट मैच में मिलेगा? यही सवाल पूछा हमारे साथी आदेश कुमार गुप्त ने क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन से।
कुछ हद तक तो सही है, क्योंकि जैसे रविंद्र जडेजा की आपने बात की, चेतेश्वर पुजारा, ये देखना है कि चेतेश्वर पुजारा को टेस्ट टीम में जब फिर से जगह मिलती है या नहीं। लेकिन अगर आप देखें शिखर धवन हो या फिर रोहित शर्मा भी हो, उन्होंने कुछ लाभ नहीं उठाया इस मौके का। तो ये कहना कि दुलीप ट्रॉफी खेलने से ही फायदा होगा, ये मेरे ख्याल से आप इस पर स्पेकुलेट कर सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते।
कम से कम वार्म अप मैच तो अच्छा मिल गया इन्हें।
बेशक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ना कि मैच फिटनेस में रहें। फिटनेस का मतलब फिजिकल फिटनेस नहीं, लेकिन मेंटली भी जो है, अगर आप बड़ी मैच खेलते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। और ये मैच जो दिलीप ट्रॉफी की थी, काफी इसको अहमियत दी गई है बीसीसीआई की तरफ से, और देनी भी चाहिए। सिर्फ अंतर इतना है कि ये डे नाइट मैचेस थी पिंक बॉल के साथ, और जो टेस्ट मैच होगी वो है डे मैचेस लाल गेंद के साथ। तो ये एडजस्टमेंट तो करना होगा प्लेयर्स को।
और कानपुर का टेस्ट मैच तो बहुत ही स्पेशल है, 500वां टेस्ट मैच, और राजीव शुक्ला जो कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ से जुड़े हैं, उनका ये कहना है कि विशेष रूप से स्टेडियम को सजाया जाएगा और भारत के सभी पूर्व कप्तानों को आमंत्रित किया जाएगा।
लैंडमार्क मोमेंट है, 500 टेस्ट पूरे हो रहे हैं, तो ये एक छोटा अचीवमेंट नहीं है। मेरे ख्याल से भारत जो है, या इंडिया जो है, तीसरी कंट्री है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा जिन्होंने 500 टेस्ट मैचेस पूरे किए हैं। तो ये एक बहुत ही एक बड़ा ओकेजन है, और पूरी कोशिश होगी यूपी क्रिकेट एसोसिएशन की कि इसको एक मेमोरेबल इवेंट बनाए। सब कैप्टन्स तो आएंगे ही, लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैच जीतती है इंडिया तो वो सबसे मेमोरेबल ओकेजन बन सकता है।
और आपको लगता है कि इस बार विकेट कुछ ऐसे दिए जाएंगे जिससे भारत की छवि खराब ना हो?
मुझे लगता है, देखें बड़ा सीजन है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 13 टेस्ट मैचेस है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये जो पिछले साल भी हमने देखा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ के टर्निंग पिचेस बनी थी, साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम, नंबर 1 टीम थी उस वक्त, वो 3 दिन नहीं टिक पा रही थी इंडियन गेंदबाजों के खिलाफ। तो कुछ आसार तो मुझे वही नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि न्यूजीलैंड की टीम जो है, क्योंकि उनके पास भी अच्छे स्पिनर्स है, या एटलीस्ट जो हमने देखा था वर्ल्ड T20 में, इश सोदी हो या मिचेल सैंटनर हो या मार्क क्रेग हो, तो उन्होंने प्लानिंग अच्छी की है, 3 स्पिनर्स को ले आए हैं यहाँ पर। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास मुझे लगता है कि स्पिन डिपार्टमेंट काफी हल्का है, लेकिन न्यूजीलैंड के पास ये डिपार्टमेंट काफी मजबूत है।
ये थे क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन। और जाते जाते सुन लेते हैं एक बार प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। कल शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के चंद घंटे बाद ही अखिलेश यादव ने उनका मंत्रालय बदल दिया। रियो पैरालंपिक में भारत को दूसरा स्वर्ण पदक मिला है। भारत के देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 63.97 मीटर जेवलिन फेंककर नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। इसराइल के पूर्व राष्ट्रपति शिमोन पेरिस को ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ब्रिटेन में एक संसदीय रिपोर्ट में लीबिया में ब्रिटेन और फ्रांस के साल 2011 में किए गए हस्तक्षेप की कड़ी आलोचना की गई है और कहा गया है कि दोनों ही देशों ने बगावत में बेवजह दखल दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन गुरुवार से अपना प्रचार अभियान फिर शुरू करेंगी। वो निमोनिया से पीड़ित हैं और फिलहाल आराम कर रही हैं। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली अजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।